ॐ पूर्णमदः
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दम् हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथम् श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम् शरणम् प्रपद्ये परम श्रद्धेय परम पूज्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के चरणों में ओम नमो नारायण करते हुए ये जो स्वामी आमंडलेश्वर स्वामी जगदीशपुरी जी महाराज ने इस उपनिषद का प्रारंभ किया था, परंतु उनकी अकस्मात शारीरिक कुछ दिक्कत होने के कारण अकस्मात ही मेरे पास गिरीश भाई का फोन आया, इसलिए मैं आज स्वामी प्रेमपुरी की और भगवान जगदीश्वर की सेवा करने के लिए यहां उपस्थित हो गया हूं। ईश्वर की कृपा ही ईश्वर की सेवा लेता है। जब ईश्वर की कृपा होती है जीव के ऊपर, तब जीव ईश्वर की सेवा में प्रवृत्त होता है। तीन कृपा हमारे शास्त्रों में बताई है। सबसे पहले ईश्वर कृपा, दूसरी शास्त्र कृपा और तीसरी आत्म कृपा। ये तीन कृपा जीव के कल्याण कारक है और कोई सेठों की कृपा हो जाए, नेताओं की कृपा हो जाए, राजाओं की कृपा हो जाए या डॉक्टरों की कृपा हो जाए, डॉक्टर को भी कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी बड़ी कृपा है ना, है वो भी कृपा ही है, परंतु कुछ अंश तक शरीर तक जीव के लिए वो कोई काम की नहीं है। जीव के लिए ये तीन कृपा ही काम कर सकती है। इन तीन कृपा से ही जीव का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे शास्त्रों ने ये तीन कृपा का संपादन करना चाहिए। शास्त्र कृपा का अर्थ ही होता है गुरु कृपा, क्योंकि गुरु ही शास्त्र का आपको प्रबोध करा देते हैं, बोध करा देते हैं, और उस शास्त्र के ही प्रबोधन से जीव को अपना बोध होता है। और जब जीव को अपना बोध होता है, उसी को ही ईश्वर का बोध हो सकता है। तो ईश्वर का बोध प्राप्त करने के लिए, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले ईश्वर की कृपा आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की कृपा के बिना ईश्वर का ज्ञान जीव को नहीं हो सकता है। जैसा किसी व्यक्ति की कृपा के बिना उसकी वास्तविकता का बोध नहीं लगता है, हम शरीर को देखकर, चेहरे को देखकर, हाव भाव को देखकर, कर्म को देखकर के जो उस व्यक्ति के प्रति भाव बनाते हैं, वो हमारा भाव यथार्थ नहीं होता है, क्योंकि हम जो दृष्टि के द्वारा इसको हेतु को मान करके साध्य का अनुमान करते हैं, वो अनुमानित ज्ञान जो होता है, अनुमानित ज्ञान जीव को सुखी करने वाला, कल्याण करने वाला नहीं होता है। हमारे शास्त्रों ने ज्ञान भी कई प्रकार के बताए हैं। ईश्वर की कृपा ईश्वर के ज्ञान के लिए आवश्यक है। हम मंदिरों में जाते हैं, मंदिरों में भगवान के दर्शन करते हैं और हम मानते हैं कि भगवान ऐसे ही है, चार भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है, पीताम्बर धारण किया हुआ है, गला में वैजयंती माला है, सिर में मुकुट है, आदि आदि हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। परमात्मा ये भी है, परंतु ये कल्पित परमात्मा है। क्या है वो कल्पित परमात्मा? है कल्पित परमात्मा सत्य नहीं होता है। हम जो कल्पना करते हैं जगत के विषय में हो, या जगत को जानकर, मानकर, कहकर के जो अनेक कल्पनाएं करते हैं, जैसे वैज्ञानिक लोग पृथ्वी की कल्पना करते हैं, नक्षत्रों की, ज्योतिषी लोग नक्षत्रों की कल्पना करते हैं, आदि आदि जो हमारा जो कल्पना है, वो कल्पना मन से निर्माण होती है और वो मन तक ही रहती है। उस कल्पना से आपको ना तृप्ति मिलेगी, ना शांति मिलेगी और ना जीव का उद्धार होगा, आदि अनेक प्रकार की जो कल्पनाओं के द्वारा हम अपने को सुख की भी कल्पना करते हैं। जैसा हम मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, महाराज बड़ा आनंद आया कहते हैं, क्या कहते हो कि नहीं कहते हो? मंदिर में जाते हैं और वहां थोड़ा भगवान का दर्शन करते हैं, उनके सामने शांति से बैठते हैं, कहा कि महाराज आज मैं मंदिर में गया था, भगवान का दर्शन किया, बड़ा आनंद आया। वास्तविक वो आनंद क्या सत्य है? जहां आप कहते हैं कि आनंद आया, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जो आया है वो जाएगा भी, तो जो आने वाला और जाने वाला होता है वो सत्य होता है क्या? वो सत्य नहीं होता है। ईश्वर की कृपा से या गुरु शास्त्र की कृपा से या आत्म कृपा से जो ज्ञान होता है, जो आनंद आता है, वो कौन सा आनंद है? वो दृश्यानंद नहीं है, अनुमानानंद नहीं है, उपमानानंद नहीं है। शास्त्रों ने जो जो आपको बताया है, या जो वैज्ञानिकों ने, कोई विज्ञान की खोज करता है, वो भी बड़ा आनंदित होता है, उसका भी आनंद है, परंतु ये आनंद कैसे हैं? नष्ट होने वाले हैं, इस आनंद में नाश है, ये आनंद विकारी भी है, समझेंगे। ये संस्कार आनंद है, संस्कार आनंद, संस्कार हो गया आपके ऊपर उस संस्कार से आपके अंदर एक आनंद निर्माण होता है, उसको संस्कार आनंद कहते हैं। आनंद भी चार प्रकार के हैं। एक आप्यानंद है, प्राप्त होने वाला, भोजन करते हैं कि नहीं, भोजन करते हैं तो आपको तृप्ति होती है, बड़ी शांति मिल गई, बड़ा आनंद आया, आज भोजन किया बड़ा आनंद आया, ये आप्यानंद है। एक संस्कार आनंद है, ये एक विकार आनंद है, और एक चौथा एक आनंदमय, अभी क्या कुछ बुद्धि में कुछ थोड़ी आ जाती है, मंदता आ जाती है, अवस्था का दोष कहो या कुछ, संस्कार्य विकार्य आप्य अप्राप्य, एक प्राप्त आनंद है, ये चार प्रकार के आनंद है। ये तो तीन आनंद है, ये आनंद संस्कारा से जो आनंद है वो संस्कारा का असंस्कार का आनंद भी ठीक नहीं है, जो विकार है विकार से भी जो आनंद होता है, जैसा स्त्री पुरुष को काम विकार आता है और उस काम विकार से फिर उसको क्या मिलता है, आनंद मिलता है, या और कोई वस्तु को हम देखते हैं या करते हैं या जानते हैं तो उससे भी हमें आनंद मिलता है, परंतु ये आनंद भी सत्य नहीं है। कहने का तात्पर्य, इससे जो आनंद मिलता है ईश्वर की कृपा से, ये प्राप्त की ही प्राप्ति का आनंद है, ये आनंद प्राप्त है, आया हुआ नहीं है, समझिएगा। ये आनंद जो आपको मिलता है ये प्राप्त आनंद है, उस प्राप्त आनंद का ही आपको प्राप्ति होती है। किससे प्राप्ति होती है, देखो अभी स्वामी जी ने तो आपको इसका प्रारंभ कर दिया था ना, ईशावास्य उपनिषद मंत्र का आरंभ कर दिया था। ये तीन कृपा की हमें अत्यंत आवश्यकता क्यों, ईश्वर की कृपा से क्या होता है और ईश्वर की कृपा क्या है। किसी को धन मिल गया तो कहते महाराज बड़ी भगवान की ईश्वर की कृपा है, धन मिलना ईश्वर की कृपा नहीं है, ना पुत्र होना ईश्वर की कृपा है, ना परीक्षा में पास होना ईश्वर की कृपा है, ना और कोई वस्तु संसार की प्राप्त होना ईश्वर की कृपा मत समझना। क्या इसको ईश्वर की कृपा मत समझना, ये तुम्हारे प्रारब्ध के खेल है, ईश्वर की कृपा इसके लिए नहीं होती है, समझे ना। और इसके लिए ईश्वर कृपा करता भी नहीं है, ये भी ध्यान रखो। तुम अपनी कल्पना का आरोप ईश्वर पर करके कह रहे हैं, समझ ना, ये तुम्हारे प्रारब्ध की तुम्हारे कर्मों की पूर्व या वर्तमान कर्मों का एक खेल है। ईश्वर इतना नादानी, ईश्वर की कृपा हो जाए और आपको नाशवान वस्तु की प्राप्ति हो जाए तो ईश्वर की कृपा का महत्व क्या रह जाएगा, रह जाएगा हा? ये तो ऐसा ही हो जाएगा जैसा कोई सेठ की कृपा हो गई और सेठ ने आपको आपके लड़की के लिए क्या कर दिया, शादी के लिए खूब पैसा दे दिया या सहयोग कर दिया, तो आप कहते सेठ की बड़ी कृपा होगी, तो क्या ऐसी ही कृपा ईश्वर की है क्या, नहीं, इसको ईश्वर की कृपा मत समझना, ये तुम्हारे प्रारब्ध के संयोग है। ईश्वर इतना नादान नहीं है कि नाशवान वस्तु ईश्वर मिले या ईश्वर प्रसन्न हो जाए और ईश्वर कृपा करे तो ईश्वर की कृपा आपको हमेशा अविनाशी वस्तु को प्राप्त करा देती है। समझे ना, जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के ऊपर कृपा की तो अर्जुन का क्या किया, क्या कर दिया, मोह को नष्ट कर दिया। क्या कर दिया, ईश्वर की कृपा तुम्हारे मोह को नष्ट करती है। मोह को नष्ट करने का मतलब होता है तुम्हारे जीवन में से ममता नष्ट होती है, अर्थात मेरापन नष्ट होता है। ये ध्यान रखो, क्या होता है, मेरापन नष्ट होता है। हाँ, तुम्हारा मेरापन यदि नष्ट हो गया, तुम किसी भी वस्तु को मेरा नहीं कहते हो तो समझ लो कि ईश्वर की कृपा है। क्या, और ये यदि कहते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये अमुक मेरा है, तमुक मेरा है, तो ये ईश्वर की कृपा नहीं समझना। ये सीधा सीधा हिसाब है। और दूसरी बात, गुरु क्या करते हैं या शास्त्र क्या करता है, शास्त्र की कृपा किससे समझना चाहिए, बहुत श्लोक बोलना या बहुत कंठस्थ करके बता देना, पाठ करना आदि आदि, क्या ये शास्त्र कृपा कहा जाएगा या गुरु कृपा कहा जाएगा? नहीं, ये तुम्हारी बुद्धि की कृपा है, समझेना। ये भी तुम्हारे प्रारब्ध का ही योग है। बुद्धि सात्विक हो गई तो कंठस्थ आप करने में कोई देर नहीं लगता है। इसको भी शास्त्र या गुरु कृपा नहीं समझना। गुरु कृपा उसको कहा जाता है कि गुरु क्या करते हैं, गुरु तुम्हारे अहंता को मिटाते हैं। समझ लेना, इसलिए तो ईश्वर की अपेक्षा से गुरु का महत्व श्रुतियों ने या वेदों ने क्यों श्रेष्ठता बताई है। तत्विज्ञानार्थम गुरु मेवा भी गच्छेत। समझ लेना, परमात्मा की कृपा से संसार का मोह, देह का मोह, नाम रूप का, गुण धर्म का, जाति वर्ण का आदि आदि जो मोह है, वो मोह ईश्वर की कृपा से नष्ट होता है। परंतु अहम जो है ईश्वर की कृपा से नहीं मिटता है, ये ध्यान रखो। अहंता जो है, अहंकार जो है तुम्हारा, वो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर अहम को नहीं मिटा सकता है। ये अहंकार को मिटाते हैं गुरु या शास्त्र। जब तक आप शास्त्र का चिंतन नहीं करें, शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, आचार्य की शरणागति नहीं करेंगे, आचार्य की कृपा संपादन नहीं करेंगे, तब तक तुम्हारा अहंकार मिटता नहीं है। अच्छा, आचार्य या शास्त्र तुम्हारे अहंकार को कैसा मिटाता है, कैसा मिटाता है, हाँ? नहीं, ईश्वर का बोध करने का मतलब क्या होता है, तुम्हें अपना बोध करा देते कि तुम क्या हो। क्या, अभी तुम्हें अपना बोध नहीं है, समझना, अभी तुम्हें अपना बोध नहीं है। बोध है परंतु देह का है, नाम का है, रूप का है, जाति वर्ण का है, देश काल का है आदि आदि, परंतु तुम्हें अपना बोध नहीं है। मैं हूं इतना तो बोध है, ये सामान्य बोध है। क्या, ये जो बोध है ये सामान्य बोध है, ये सामान्य बोध तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता है। सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान है तो विशेष अज्ञान भी है, और विशेष अज्ञान, सामान्य ज्ञान और विशेष अज्ञान होता हुआ भ्रांति निर्माण होती है। तो ये आपके अंदर भ्रांतियां निर्माण हो रही है। किससे? सामान्य ज्ञान तो आपको, प्रत्येक जीव को अपना सामान्य ज्ञान है, मैं हूं इतना तो आपको बोध है, अहम का ये बोध तो है, परंतु ये बोध सामान्य है। और आचार्य बोध कराते हैं तो विशेष बोध कराते हैं, शास्त्र आपको बोध कराता है तो विशेष बोध कराता है। विशेष बोध कराने का मतलब क्या है कि तुम जो अभी हो, क्या तुम्हारे अंदर जो है अभी बोध, वो किसी को मनुष्यपन का है, किसी को जीवपन का है, किसी को सुखकर्ता भोक्तापन का है, आदि आदि, ये जो बोध है ये बोध आपके अत्यंत तुच्छ है, परिच्छिन्न है। और नाल्पे सुखमस्ति, शास्त्र कहता है भूमा वै सुखम नाल्पे सुखमस्ति, अल्पता में सुख नहीं है। भूमा का मतलब होता है व्यापकता में बोध, व्यापकता का बोध। तुम्हें अपना बोध तो है परंतु शरीर तक ही है, आपका बोध कैसा है, सीमित है, सीमित। तुम कण कण में अपने का अनुभव, अपना अनुभव नहीं करते, का करते हो नहीं। जब आपका ही आप कण कण में अनुभव नहीं करोगे तो ईश्वर का कण कण में अनुभव कैसा करोगे? प्रश्न होता है कि नहीं होता है? जो अपने को छोड़कर के ईश्वर का व्यापक कहने से क्या ज्ञान हो गया, कहा जाएगा? हा? कहा कि महाराज मैं तो भगवान को सब जगह देखता हूं। जैसी कहावत है ना, कठवट में गंगा, आपने क्या मन चंगा तो कठवट में गंगा कहते हैं कि नहीं? ये कौन लोग कहते हैं मालूम है? नादान लोग है, नादान लोग। पहला ये तो प्रश्न है उसको कि तुम्हारा मन चंगा है कि नहीं है? हा? मन चंगा है नहीं यार, कह रहे कि मन चंगा तो कठोर में गंगा, गंगा जाने की क्या जरूरत है? तो ऐसी ही ये बात हो गई है, समझ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपका बोध करा देते हैं, परंतु कैसा बोध करा देते हैं? विशेष बोध का मतलब क्या होता है? विशेष बोध का मतलब होता है व्यापक बोध, अपरिच्छिन्न बोध, अविनाशी बोध, अविनाशी आनंद। उस अविनाशी बोध से ही अविनाशी आनंद मिलेगा, वो समाप्त तो होने वाला नहीं है। उपनिषद आपको क्या कराते हैं? देखो, शास्त्र आपको बोध करा देता है, और आचार्य क्या कराते हैं? वो तो शास्त्र ही कराता है विशेष बोध, परंतु आचार्य क्या कराते हैं? नहीं तो फिर आचार्य की महत्ता क्या है? शास्त्र बोध तो करा देता है, परंतु शास्त्र का बोध जड़ है। क्या है? जड़ है। आचार्य क्या कराते हैं? आपको चेतन बोध करा देते। चेतन बोध का मतलब क्या होता है? आपके पूर्ण अज्ञान को मिटा देते हैं। क्या करा देते हैं? जो आपकी अविद्या है, जो अज्ञानता है, जो मूढ़ता है, जो मंदता है, जिसके कारण तुम्हारे अंदर अनेक प्रकार के संशय निर्माण हो रहे हैं, भ्रांतियां निर्माण हो रही है, आचार्य ये काम करते हैं। अज्ञानता का पर्दा हटा करके फिर शास्त्र का बोध सार्थक होता है। शास्त्र के बोध को सार्थक कराने वाले सद्गुरु कहे जाते हैं, या संत महापुरुष कहे जाते हैं, आचार्य कहे जाते हैं। इसलिए आचार्य के बिना श्रुतियां क्यों कहती है? तत्विज्ञानार्थम, क्या श्रुति ने तो बता दिया है न, परंतु अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ तो श्रुति का वाक्य केवल क्या रहेगा, परोक्ष ज्ञान मात्र रहेगा। क्या रहेगा? परोक्ष ज्ञान। और आचार्य उस परोक्ष ज्ञान को साक्षात अपरोक्ष बना देते हैं, ध्यान रखो। इसलिए जीवन में आचार्य की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी आवश्यकता। शास्त्र और आचार्य दोनों एक ही बात, शास्त्र की ही बात बता देते हैं आचार्य, परंतु शास्त्र के बात को सार्थक बना करके सार्थक बना देते हैं। और शास्त्र की सार्थकता अज्ञान की निवृत्ति में है, समझना। और वो अज्ञान आचार्य ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो अनेक प्रकार के संशय विपर्य असंभावनाएं जो है, इन असंभावनाओं को कौन दूर करेगा? इसलिए आचार्य की भी आवश्यकता है, इसलिए आचार्य की कृपा आवश्यक है। और तीसरी है आत्मकृपा, सबसे श्रेष्ठ है, समझे ना, अपनी अपने ऊपर कृपा, समझे। जब तक जीव की अपने अपने ऊपर कृपा नहीं होती है, अपने अपने ऊपर कृपा का अर्थ संक्षेप में बताता हूं, उत्कृष्ट जिज्ञासा, मुमुक्षुता जिसको कहते हैं, वो जीव के जीवन में मुमुक्षुता आना चाहिए। मुमुक्षुता आ गई तो समझ लो आत्म कृपा हो गई। मुक्त तो होना तो चाहते हैं सब, चाहते हो कि नहीं चाहते हो, परंतु मृत्यु से डरते रहते हैं। क्या करते हैं? मुक्त होना तो चाहते हैं परंतु मृत्यु से डरते हैं। मृत्यु को डरने का मतलब क्या होता है? ये मृत्यु का डर क्या है, कभी हमने सोचा है? क्योंकि मृत्यु ही हमने समझा नहीं तो मृत्यु का डर कहां से समझेंगे? तो जहां मुमुक्षुता होती है ना, मुमुक्षुता, ये मुमुक्षुता आपके मृत्यु के डर को समाप्त करती है, समझे ना। मुमुक्षु डरपोक नहीं होता है, और जो डरपोक होता है मुमुक्षु नहीं होता है, मरने को डरता नहीं है मुमुक्षु, क्योंकि वो जानता है कि मरना तो मेरे को है ही नहीं, तो डर काय का है भाई, हाँ? मरेगा कौन? तुम मरोगे, हाँ? कभी मरे हैं या मर रहे हैं या मरेंगे? यह मृत्यु का डर क्यों है? क्योंकि अविद्या, इसका कारण है अविद्या, समझ रही ना। कहने का तात्पर्य है ये तीन कृपा जीव के जीवन में आना चाहिए, ईश्वर की कृपा, शास्त्र या आचार्य की कृपा और आत्म कृपा, ये तीन कृपा आवश्यक है। और ये तीनों कृपा का संपादन प्राप्त करने का साधन क्या है? उन तीनों कृपा का प्राप्त करने का साधन शास्त्र है, समझे ना। और शास्त्र का मतलब केवल वेदांत शास्त्र, ये भी मत समझना, शास्त्र तो दूसरे भी है, परंतु उसमें आपको जिज्ञासा निर्माण कर सकते हैं, परंतु मुमुक्षुता नहीं कर सकते हैं। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, समझ रही ना। मुमुक्षुता आपको केवल वेदांत शास्त्र ही, उपनिषद ही आपको मुमुक्षु बना सकते हैं, दूसरा नहीं। ना मीमांसाकार बना सकते हैं, ना सांख्यकार बना सकते हैं, ना नैयायिक बना सकते हैं, ना पातंजलि योग वाले बना सकते हैं, हाँ जिज्ञासु बना सकते हैं, आपको धार्मिक बना सकते हैं, भक्त बना सकते हैं, योगी बना सकते हैं, परंतु मुमुक्षु नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है, इनके बिना भी मुमुक्षुता नहीं आएगी। ये अंग है, क्या है, जैसे वेद है, वेदों के षडांग बताए कि नहीं, वेदों के षडांग है, षडांग वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान के ये छह अंग है, हमारे जो छह शास्त्र है ये षडांग है, जैसे आपके हाथ पैर कान नाक आंख मुख है न? ये सब मिलकर ही तो तुम्हारी अस्तित्व है, इस उपांगों की भी जरूरत है, परंतु यही मुख्य है, इसी में ही ये रहना वो ना समझिए। आपको हाथ पैर की भी जरूरत है, नाक कान की भी जरूरत है, जिह्वा की भी जरूरत है, परंतु ये किसके लिए, कुछ कार्य तक, कुछ सिद्धि तक इसका उपयोग है ना? ये भी जीव के मुक्ति के प्रति साधन के रूप में है, ऐसे ही ज्ञान जो तत्व का बोध करने के लिए अन्य शास्त्र भी कारण है। कैसे कारण है, इनके भी चिंतन से आपकी अंतकरण की शुद्धि हो सकती है, आपके कुछ तक सीमा तक ये काम करते हैं, परंतु वेदांत शास्त्र आपको वही ले जाकर पहुंचा देता है कि जो तुम्हारा परम लक्ष्य है। इसलिए वेदांत शास्त्र की जरूरत है, और वेदांत शास्त्र यदि हमारे जीवन में लाना है तो उपनिषदों के बिना नहीं आ सकता है, इसलिए तो प्रस्तांत्रयी का महत्व हमारे सन्यासियों में विशेष है। क्या उपनिषद है, गीता है और ब्रह्मसूत्र है, तो उपनिषद क्या करते हैं, देखो अन्य शास्त्र तो आपको कोई इधर ले जा रहा है, कोई उधर ले जा रहा है, कोई पीछे ले रहा है, कोई आगे ले रहा है, कोई ऊपर ले जा रहा है, कोई नीचे ले जा रहा है ना, दसों दिशाओं में भटकाते हैं, परंतु उपनिषद क्या करता है, उपनिषद तुम्हारा भटकाव दूर कर देता है, ये ध्यान रखो, और जो भटकता है वो कभी स्थिर हो सकता है, शांत हो सकता है, हा? वो कहावत है प्रवासी नित्य दुखी है ना, जो प्रवासी होता है वो कभी सुखी हो सकता है नहीं, उपनिषद तुम्हें प्रवासी नहीं बनाता है, तुम्हें यात्री नहीं बनाता है, समझे ना, अन्य शास्त्र तुम्हें भ्रमण कराते हैं। तुकाराम का एक वाक्य मुझे याद आया, पाहिली पुराने धांडो लली दर्शनी, ऐसा न देखे मैं कोनी, दुजाती ही त्रिभुवनी, तुझवीन कोना शरण जाऊ नारायणा, ऐसा न देखे मैं कोनी, दुजाती ही त्रिभुवनी। आपको शांति चाहिए तो एक ही जगह पर आपको आना ही होगा, ये शर्त है, उसके बिना शांति नहीं है ना? आप दिन भर कितने भी भटकोगे, परंतु जब थक जाओगे, दुखी हो जाओगे, थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, अब जाओ, चलो अब घर चले, कहते कि नहीं हो, और घर में भी कहा, घर में कहते नहीं आप विस्तार पर चला दिए। क्यों? अच्छा, वहां जो तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, तृप्ति मिल रही, क्या करने से मिल रही है, ये मैं पूछता हूं। तुम सोते हो है ना, बिस्तर पर पड़ते हो, तो किस लिए पड़ते हो? सोने के लिए है ना। और सुषुप्ति में जो आनंद है वो आनंद सत्य नहीं, परंतु उस आनंद की एक झलक मात्र है। वो आनंद आपको क्या करने से मिल रहा है? ये बताओ, मैं पूछ रहा हूं कि वो आनंद आपको क्या करने से मिल रहा है? वो कुछ करने से नहीं है। क्या करने से है? सब छोड़ने से। क्या तुम सब छोड़ते हो कि नहीं? बोलना छोड़ देते हो, सुनना छोड़ देते हो, देखना छोड़ देते हो, चलना छोड़ देते हो, और चित्त जो इधर उधर दौड़ रहा है उसको भी छोड़ देते हो। सब छोड़ते हैं कि नहीं? सब छोड़ते हैं, सब छूट जाता है, तब आपको शांति होती है, तब दुख का परिहार होता है ना, तब आनंद की आपत्ति होती है। दुख का परिहार हो जाता है और आनंद की आपत्ति होती है। वो कौन सा आनंद है? किसका आनंद है? पुत्रानंद है, धनानंद है, मानानंद है, पदानंद है, किसका आनंद है? वो तुम्हारा ही आनंद है, वो और किसी का नहीं है। ये आनंद तो है, परंतु आचार्य या शास्त्र या गुरु क्या करते हैं? इसी आनंद को महान बना देते हैं। समझे ना, तुम्हारा ही आनंद है, परंतु वो परिच्छिन्न है। उसका जब तक आप सो रहे हैं तभी तक ही वो आनंद है। सुषुप्ति के बाद है क्या? नहीं। तो आचार्य आपको ये करा देते हैं, वो अज्ञान अविद्या अवच्छिन्न आनंद है वो, इसलिए तो अविद्या वृत्ति कहा है वहां। समझी ना, क्या है सुषुप्ति का आनंद जो है, आनंदमय कोश कहा क्या नहीं है, परंतु वो आनंदमय कोश तो है, परंतु कैसा? अविद्या वृत्ति से अवच्छिन्न है, अविद्या से अवच्छिन्न है, इसलिए वो भी व्यापक नहीं है, परिच्छिन्न है। इसलिए आचार्य उसी आनंद को आपको महान बना देते हैं। परिच्छिन्नता, क्योंकि अविद्या को निवृत्त कर दिया, अविद्या की सत्ता ही समाप्त कर दी, तो फिर जैसा मकान है, आकाश है ना। अब तुम्हें पूछा तो आप क्या कहेंगे कि हम प्रेमपुरी में बैठे हो, और तुम्हें ये पूछा कि प्रेमपुरी क्या है? क्या तुम प्रेमपुरी को, ये प्रेमपुरी आध्यात्म भवन को सिद्ध कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या ये सिद्ध नहीं कर सकते? हम कहते हैं कि तुम प्रेमपुरी में नहीं बैठे हो, तुम तो महाकाश में ही बैठे हैं, और ये हम सिद्ध कर सकते हैं। क्या ये हम सिद्ध कर सकते हैं? ऐसे ही तुम्हारा जो मैं है, इस मैं को ही ब्रह्म बनाने वाले कौन है? आचार्य है। समझे ना, और कैसे बनाते हैं? इस प्रेमपुरी को महाकाश बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे ये सब हटाना पड़ेगा कि नहीं है? सब हटाते जाओ तो प्रेमपुरी को महाकाश बनने के लिए क्या करना पड़ रहा है? दीवालों को हटाना पड़ रहा है। दीवारें हट जाए तो प्रेमपुरी महाकाश है, सिद्ध ही है। कुछ आया नहीं महाकाश इसमें, वो था ही, परंतु जो प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक ने उस महाकाश को परिच्छिन्न बना करके दिखा दिया था। और परिच्छिन्न आनंद को, परिच्छिन्न आकाश को ही हम प्रेमपूरी नामकरण कर दिया है। इसी प्रकार से ये जीव अविद्या से जो अवच्छिन्न है, सद्गुरु इसी जिसके कारण ये अविच्छिन्नता ये आ गई है, उसको समाप्त कर देते हैं। इसके लिए इनकी भी जरूरत है। तो ये उपनिषद आपके अंदर ये मुमुक्षा निर्माण करता है, अविद्या के निवृत्ति की मुमुक्षा है। मुमुक्षा का मतलब मुचली धातु से ही मुमुक्षु शब्द बन जाता है, समझे ना? अर्थात मुक्त होने की इच्छा। मुक्त किससे? अविद्या से, समझे ना? बंधन किसका है? अविद्या का ही बंधन है, और अविद्या से ही मुक्त होना है। और वो अविद्या क्या है? तुम्हारा अहंकार अविद्या है, तुम्हारी ममता अविद्या है, जान रखो। ये अविद्या के दो रूप है, अहम में और मम में। इसलिए तो इसको भगवत पाद शंकराचार्य ने अध्यास कहा है, भ्रांति कहा है इसको, अध्यास है। क्या? क्योंकि यहां अज्ञान है, अज्ञान के कारण ही आपको ये अहम की भ्रांति हो रही है। अहम मिट जाता है तो कैसा मिट जाता है? इसकी परिच्छिन्नता समाप्त कर देते हैं। परिच्छिन्न समाप्त का परिच्छिन्नता समाप्ति का नाम ही व्यापकता है, और यही इन उपनिषदों के द्वारा आपको कराया जाता है। यदि उपनिषद से उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, तो तुम्हारे जीवन में कभी भी मुमुक्षुता नहीं आ सकती। अविद्या से मुक्त होने की इच्छा कभी भी नहीं हो सकती है, और कोई भी शास्त्र नहीं करा सकता है। तो कहने का तात्पर्य है, ये ईशावास्य उपनिषद, उपनिषद बहुत है, कोई 500 भी उपनिषद बताते हैं, कोई 108 उपनिषद बताते हैं, परंतु जो वास्तविक जो है, हमारे भगवत पाद शंकराचार्य ने जो 10 उपनिषद हैं, क्या जैसे कोई 10 महाविद्या भी कहा जाता है, ये महाविद्या है, समझे ना? और विद्या है, अन्य उपनिषद भी क्या है? विद्या है, परंतु महाविद्या नहीं है, समझे ना? ये 10 जो उपनिषद है, इस 10 उपनिषदों में सबसे प्रथम उपनिषद जो है वो ईशावास्य है। क्यों? इसका भी कुछ कारण है कि नहीं है? और ये उपनिषद आप जानते ही हैं, स्वामी जी ने बता दिया होगा, यजुर्वेद जो 4 वेद है, वो 4 वेदों में यजुर्वेद एक है। यजुर्वेद में 2 शाखाएं हैं, एक कण्व शाखा और एक माध्यम दिन शाखा, और दोनों में भी ये उपनिषद आया हुआ है, पर थोड़ा थोड़ा भेद है, अंतर है। यजुर्वेद में 40 अध्याय है, और ये उपनिषद जो है यजुर्वेद के कण्व शाखा का, कण्व शाखा का ये 40वां अध्याय है। कितना? 40वां अध्याय। पूर्व में 39 अध्याय जो है, उस 39 अध्याय में कर्म और उपासना का वर्णन है, और ये उपनिषद ज्ञानकांड है, ज्ञानकांड है। आदि स्वामी जी ने इसका बता दिया होगा, आप लोगों को सब जानते ही है। तो ये जो उपनिषद कण्व शाखा के अंतर्गत जो आता है, ये ईशावास्य उपनिषद है। इसका सबसे पहला मंत्र यही है। तो कहा कि जब इस यजुर्वेद में कर्मकांड का विशेष महत्व दिया है, कर्मकांड में विशेष यजुर्वेदीय मंत्र का विनियोग किया जाता है, परंतु इन ईशावास्य उपनिषद का कर्मकांड में विनियोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसका पहला ही मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित जगत्याम जगत्। क्योंकि यहां कर्म का कर्म से आरंभ नहीं है, यहां किससे आरंभ है? ईश्वर से, ईश्वर से, ईश्वर से आरंभ किया है और समाप्ति भी ईश्वर में ही है। जिसका आरंभ भी प्रस्तावना भी ईश्वर है और जिसका उपसंहार भी ईश्वर है। ज्ञान का आरंभ भी ज्ञान से होता है, ज्ञान की समाप्ति भी ज्ञान में ही होती है। समझेंगे? जो उपक्रमोपसंहाराभ्याम अभ्यासापूर्वतो फलम अर्थवादोपपत्तिंच लिंगम तात्पर्य निर्णय। तात्पर्य का निर्णय करने के लिए ये षडांग होते हैं, समझना। तो ये उपनिषद का मंत्र सबसे पहले ईश्वर का ही आरंभ करता है, कोई अन्य देवी देवताओं का आरंभ नहीं करता है। कर्म में और उपासना में ये देवी देवताओं का भी आरंभ होता है, समझना। परंतु यहां वो नहीं है। बहुत विचार है। अभी देखो महाराज जी की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक तो ये सेवा का अवसर ईश्वर ने मेरे को दिया है, तब तक करता रहूंगा। आज टाइम हो गया है, आज यही विराम करते हैं। कल ईशावास्य इस शब्द पर थोड़ा सा विस्तार करेंगे। आपके जीवन में ये उपनिषद ही मुमुक्षुता लाता है, कैसा लाता है, इसके विषय में भी कल बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।